हम सफ़र न्यूज़ रूम से मैं अंबिका, पेश हैं समाचार। आज दिन सोमवार, तारीख 2 जून 2025। आज के मुख्य समाचारों में, आज सुबह लॉरेंशियंस के सेंट हिप्पोलाइट में पुलिस का एक बड़ा कैंपेन चल रहा है। एसक्यू ने पुष्टि की है कि शामिन डुलेक मॉरेंसी के पास एक तैनाती चल रही है, लेकिन जांच की सुरक्षा के लिए इसके आसपास की परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया गया है। इधर सेंटर सर्विसेज स्कॉलर डेला रिवियर डुनॉर्ड ने घोषणा की है कि हाउटर्स प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में स्थापित परिधि के कारण इसे बंद किया जाएगा। सेंट हिप्पोलाइट की नगर पालिका, जिसकी आबादी लगभग 11,000 है, MRC डेला रिवियर डुनॉर्ड में स्थित है। इधर क्यूबेक में रविवार को नए नियम लागू हुए, जिसके तहत स्टोर साइन पर फ्रेंच भाषा को प्रमुख भाषा बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। ये बदलाव क्यूबेक के 2022 में फ्रेंच भाषा कानून में किए जाने वाले बदलाव का हिस्सा हैं, जिसे बिल 96 के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि प्रांत ने फ्रेंच भाषा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नए नियम 1 जून को लागू हुए हैं, जबकि कमर्शियल समूहों ने कंपनियों के लिए अनुपालन की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि बिजनेसेस को ऐसे बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, जो बोझिल होने के साथ साथ महंगे भी हैं। स्टोर साइन पर फ्रेंच भाषा को स्पष्ट रूप से प्रमुखता से इसमें डिस्प्ले किया जाना चाहिए। नए नियमों के तहत स्टोर साइन और कमर्शियल विज्ञापन पर फ्रेंच भाषा को अन्य भाषाओं की तुलना में 2 गुना स्थान मिलेगा। इसका मतलब है कि कैनेडियन टायर, बेस्ट बाय और सेकंड कप जैसे अंग्रेजी नामों वाले स्टोर को अपने स्टोर फ्रंट पर फ्रेंच में सामान्य शब्द या विवरण शामिल करने होंगे, जो टेक्स्ट के लिए समर्पित स्थान का 2/3 हिस्सा बनेंगे। रिटेल काउंसिल ऑफ कनाडा के क्यूबेक अध्यक्ष ने कहा है कि बिजनेसेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने स्टोर फ्रंट को बदलते समय नगरपालिका के बायलॉज और मकान मालिक की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं। प्रोडक्ट लेबलिंग पर इस समय पहले से ही फ्रेंच में अनुवादन होना मैंडेटरी है, लेकिन अन्य भाषाओं में ट्रेडमार्क के लिए एक अपवाद है, जिसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। इधर नवीनतम विनियमन में कभी कभी ट्रेडमार्क में शामिल सामान्य शब्दों पर भी टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि लेवेंडर और शिया बटर हैंड सोप, इसमें भी अब अनुवाद करने जरूरी होंगे। एसटीएम के बस चालकों और मेट्रो ऑपरेटर्स ने शनिवार शाम को असीमित आम हड़ताल सहित दबाव की रणनीति के पक्ष में मतदान किया। सीपीयू के अनुभाग के सदस्यों ने एक आम बैठक में हड़ताल के आदेश के पक्ष में 99% मतदान किया। बस चालकों और मेट्रो ऑपरेटरों के अलावा संघ एसटीएम के लिए स्टेशन एजेंटों और पैरा ट्रांजिट ड्राइवर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कुल 4,500 सदस्य हैं। सीपीयूईयू का कहना है कि एसटीएम प्रशासन संघीकृत कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण मांगे करना जारी रखेगा, विशेष रूप से कार्य शेड्यूल, कार्य जीवन बैलेंस और नौकरी की सुरक्षा के संबंध में। इसमें वेतन वृद्धि और पैरा ट्रांजिट सेवाओं के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा भी संघ के सदस्यों और एम्प्लॉयर्स के बीच विवाद का एक बिंदु है। CUPE लोकल 1983 के अध्यक्ष ने कहा कि एसटीएम रखरखाव कर्मचारी संघ ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे 9 जून से हड़ताल पर जाएंगे, जो मॉन्ट्रियल में फॉर्मूला ग्रैंड प्री के साथ मेल खाता है। क्यूबेक जंगल की आग से प्रभावित प्रांतों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। प्रीमियर फ्रांसवा लेगो ने रविवार को घोषणा की कि मंगलवार को अल्बर्टा में एक विशेष प्रबंधन दल भेजा जाएगा, साथ ही मैनिटोबा में 20 फायर फाइटर्स के 3 सेक्शन भेजे जाएंगे। इस बीच 2 वाटर बॉम्बर्स पहले से ही सैस्केचुआन में हैं और 2 अन्य ओंटेरियो में हैं। सैस्केचुआन, अल्बर्टा, मैनिटोबा और ओंटेरियो जंगल की आग के साथ कठिन समय से गुजर रहे हैं। प्रीमियर ने कहा कि वे इस समय सॉफू की मदद से उन पर पूरी तरह से आगे आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री फ्रांसवा बॉर्नडल इस समय स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और हाल के घंटे में हुई बारिश हमें अन्य प्रांतों में अपने समकक्षों की मदद करने का अच्छा मौका देगा। शुक्रवार को क्यूबेक सरकार ने जंगलों में या उसके आसपास खुली आग पर प्रतिबंध हटा लिया है। ये उपाय प्रांत के उत्तरी क्षेत्रों में बुधवार से लागू किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में सैस्केचुआन और मैनिटोबा ने प्रांतीय आपातकालीन की घोषणा की थी, क्योंकि जंगल की आग दूरदराज के उत्तरी क्षेत्रों को इस समय खतरे में डाल रही है। मॉन्ट्रियल के वेस्ट आइलैंड पर DDO में हुई एक टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। शनिवार को सुबह करीब 3:45 पर एक वाहन के पेड़ से टकराने के बाद निवासियों की नींद खुली। कई लोगों ने फेब्रिक स्ट्रीट चौराहे के पास स्प्रिंग गार्डन स्ट्रीट पर हुई दुर्घटना के लिए 911 पर कॉल किया। मॉन्ट्रियल पुलिस ने कहा कि पुलिस के वहां पहुंचने पर पहले से ही बचावकर्मी वाहन के अंदर फंसे लोगों को निकाल रहे थे, जिसमें तीन लोग सवार थे, एक चालक और दो यात्री। यात्रियों में से एक 26 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक चालक और दूसरे यात्री को अस्पताल ले जाया गया, जिनकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि कार पेड़ से टकराने से पहले बहुत तेज गति से चल रही थी। इस बीच कुछ अन्य खबरों में, अमेरिका में भौतिक बाजार से एल्यूमिनियम खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम आज से बढ़ गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका एल्यूमिनियम आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश में परिवहन, पैकेजिंग और निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले लगभग सभी एल्यूमिनियम का आधा हिस्सा कहीं और से आता है, जिनमें से अधिकांश कैनेडा से है। नए टैरिफ 4 जून से प्रभावी होने वाले हैं। भौतिक बाजार में खरीदार आमतौर पर लंदन मेटल एक्सचेंज, बेंचमार्क एल्यूमिनियम और साथ ही अन्य के साथ इस समय परिवहन और हैंडलिंग लागतों को कवर करने वाले प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इस बीच यूएस मिडवेस्ट ड्यूटी पेड एल्यूमिनियम आज सुबह $0.58 प्रति पाउंड या फिर से ज्यादा ऊंचाई पर सामने आया। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 50% आयात शुल्क को पूरी तरह से दर्शाने के लिए प्रीमियम को $0.68 और $0.70 के प्रति पाउंड पीठ के बीच बढ़ाना होगा। उद्योग मंत्री मेलानी जॉली ने कहा है कि ऑटवा राष्ट्रीय अवसंरचना और रक्षा परियोजनाओं में कनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जॉली ने रविवार को मॉन्ट्रियल में एक शिखर सम्मेलन में एल्यूमिनियम उद्योग के नेताओं से बातचीत की। जॉली ने कहा कि सरकार ये देखने का इंतजार कर रही है कि ट्रंप कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ को 50% तक बढ़ाने पर अपनी धमकी पर अमल करते हैं या नहीं। इस बीच यूनियंस यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ने कहा कि वे जॉली की घोषणा का स्वागत करते हैं। और अंत में, सोमवार रात यानी आज कनाडा के अधिकांश हिस्सों में इस समय नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दे सकती हैं। यूएस नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार आज रात लगभग पूरे बीसी, अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिट्यूबा, यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में चमकदार नजारा दिखाई देगा। और इसके अलावा ओंटारियो, क्यूबेक और अटलांटिक कनाडा के बड़े हिस्सों के ऊपर उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न होराइजन पर रोशनी देख सकते हैं। हालांकि रोशनी घंटों तक दिखाई देगी, लेकिन ये रात 11 से 2 के बीच खास तौर पर चरम सीमा पर होगी। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हम सफर से।